नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मिहाय चिकसेंटमिहाय की पुस्तक फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस सकारात्मक मनोविज्ञान की एक प्रभावशाली गैर कथाकृति है। पहली बार 1990 में प्रकाशित यह पुस्तक उस अनुभव की जाँच करती है जिसमें व्यक्ति किसी सार्थक गतिविधि में इतना डूब जाता है कि समय, बाहरी चिंता और अपने प्रति सजगता का बोध पीछे छूट जाता है। लेखक इसे फ्लो या इष्टतम अनुभव कहते हैं। पुस्तक का उद्देश्य केवल अधिक उत्पादक बनने की विधि देना नहीं है। इसका व्यापक प्रश्न यह है कि मनुष्य अपनी चेतना और ध्यान को इस तरह कैसे व्यवस्थित करे कि जीवन भीतर से अधिक संतोषजनक बने। चिकसेंटमिहाय साक्षात्कारों और अनुभव संबंधी शोध के आधार पर खेल, कला, काम, सीखने, अवकाश और रिश्तों में मिलने वाले गहरे तल्लीन अनुभवों के साझा गुणों को समझाते हैं। उनका केंद्रीय तर्क है कि स्थायी संतोष बाहरी प्रतिष्ठा, धन या निष्क्रिय मनोरंजन से अपने आप नहीं आता। वह अक्सर स्वेच्छा से चुनी गई, चुनौतीपूर्ण और कौशल मांगने वाली गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से बनता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, फ्लो में चुनौती और क्षमता का सटीक संतुलन। पुस्तक का सबसे परिचित विचार यह है कि फ्लो तब उभरने की संभावना बढ़ती है जब कार्य की चुनौती व्यक्ति की उपलब्ध क्षमता के अनुरूप हो। यदि चुनौती कम हो और क्षमता अधिक तो ऊब पैदा होती है। यदि चुनौती बहुत अधिक हो और कौशल अपर्याप्त तो चिंता, असहायता या कार्य से बचने की प्रवृत्ति बढ़ती है। फ्लो इन दोनों स्थितियों के बीच का स्थिर बिंदु नहीं बल्कि एक गतिशील संतुलन है। जैसे जैसे व्यक्ति किसी काम में दक्ष होता है वही काम साधारण लगने लगता है, इसलिए रुचि बनाए रखने के लिए लक्ष्य या कठिनाई को भी बढ़ना पड़ता है। इसी कारण लेखक फ्लो को विकास से जोड़ते हैं, केवल आराम या सुख से नहीं। यह ढांचा बताता है कि कठिन काम अपने आप अप्रिय नहीं होता। कठिनाई तब सार्थक लग सकती है जब व्यक्ति के पास उससे निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी और नियंत्रण का अनुभव हो। इसके विपरीत, बहुत आसान काम तत्काल आराम दे सकता है पर लंबे समय तक गहरी भागीदारी नहीं देता। पुस्तक इस संतुलन को खेल या पेशे तक सीमित नहीं करती। संगीत सीखना, बागवानी, अध्ययन, शिल्प या जटिल बातचीत भी तभी अधिक तल्लीन करने वाली बन सकती है जब उनमें बढ़ती क्षमता के अनुकूल स्पष्ट चुनौती मौजूद हो। दूसरा, स्पष्ट लक्ष्य और त्वरित प्रतिक्रिया ध्यान को व्यवस्थित करते हैं। चिकसेंटमिहाय के अनुसार फ्लो का आधार केवल रुचि नहीं बल्कि गतिविधि की सुव्यवस्थित बनावट भी है। व्यक्ति को यह समझ में आना चाहिए कि अभी क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है और उसका प्रयास काम कर रहा है या नहीं। स्पष्ट लक्ष्य ध्यान को अनिश्चितता से बचाते हैं। त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्ति को हर कदम पर अपने व्यवहार को सुधारने देती है। उदाहरण के लिए, खेल में अंक, संगीत में स्वर की शुद्धता, चढ़ाई में अगला सुरक्षित पकड़ बिंदु या लेखन में तर्क की संगति कार्य की प्रगति के संकेत बन सकते हैं। प्रतिक्रिया हमेशा किसी औपचारिक अंक या बाहरी प्रशंसा के रूप में नहीं होती। कई गतिविधियों में काम की अपनी संरचना ही बताती है कि अगला कदम उपयुक्त है या नहीं। यह विचार काम के बारे में पुस्तक की महत्वपूर्ण आलोचना भी सामने लाता है। अनेक नौकरियों में लक्ष्य दूर के, अस्पष्ट या केवल बाहरी आदेश होते हैं और उपयोगी प्रतिक्रिया देर से मिलती है। ऐसी परिस्थितियों में तल्लीनता कठिन हो जाती है। फिर भी लेखक संकेत देते हैं कि जहां संभव हो काम को छोटे, समझने योग्य लक्ष्यों और दिखने वाले प्रगति संकेतों में बांटना उपयोगी हो सकता है। लक्ष्य और प्रतिक्रिया मिलकर चेतना को वर्तमान कार्य से जोड़ते हैं जिससे भटकाव और आत्मसंदेह के लिए कम मानसिक जगह बचती है। तीसरा, चेतना, सीमित ध्यान और मानसिक अव्यवस्था का प्रश्न पुस्तक फ्लो को केवल भावनात्मक उत्साह नहीं मानती बल्कि चेतना के संगठन की अवस्था के रूप में रखती है। लेखक के लिए ध्यान एक सीमित मानसिक संसाधन है। हर क्षण व्यक्ति को बाहरी सूचनाओं, स्मृतियों, इच्छाओं और चिंताओं में से कुछ को महत्व देना पड़ता है। जब ध्यान बिखरा रहता है विरोधी इच्छाएं और चिंताएं मानसिक अव्यवस्था पैदा कर सकती हैं। फ्लो में उपलब्ध ध्यान लगभग पूरी तरह उस गतिविधि की मांगों में लग जाता है जो व्यक्ति कर रहा होता है, इसलिए रोजमर्रा की परेशानियों का बोध स्थायी रूप से कम हो जाता है। यह पलायन का सिद्धांत नहीं है। अंतर यह है कि फ्लो में व्यक्ति निष्क्रिय रूप से ध्यान भटकाता नहीं बल्कि चुने हुए कार्य में अपनी मानसिक ऊर्जा निवेश करता है। गतिविधि के नियम, लक्ष्य और प्रतिक्रिया ध्यान को एक दिशा देते हैं। इसीलिए लेखक यह भी कहते हैं कि खाली समय अपने आप संतोषजनक नहीं बनता। बिना उद्देश्य का अवकाश कई लोगों के लिए बेचैनी, निष्क्रियता या बिखरे मनोरंजन में बदल सकता है। संतोषजनक अवकाश के लिए भी ध्यान लगाने योग्य कौशल और संरचना चाहिए। पुस्तक का व्यापक निष्कर्ष है कि जीवन की गुणवत्ता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपनी सीमित ध्यान शक्ति को किन गतिविधियों, संबंधों और उद्देश्यों में लगाता है। चौथा, स्वचेतना का क्षीण होना और समय के अनुभव में बदलाव। फ्लो के दौरान व्यक्ति अक्सर यह महसूस करता है कि क्रिया और जागरूकता अलग अलग नहीं रही। वह लगातार यह नहीं सोच रहा होता कि दूसरे उसे कैसे देख रहे हैं, वह पर्याप्त अच्छा है या नहीं, अथवा उसके प्रदर्शन का सामाजिक अर्थ क्या होगा। इस अस्थायी रूप से घटती स्वचेतना को लेखक आत्म का नष्ट हो जाना नहीं कहते, बल्कि गतिविधि पूरी होने के बाद व्यक्ति अधिक सक्षम, व्यवस्थित या विस्तृत आत्मबोध अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसने किसी कठिन मांग का सामना किया होता है। समय का अनुभव भी बदल सकता है। कई लोगों को लगता है कि घंटों का समय बहुत जल्दी बीत गया, जबकि कुछ तीव्र गतिविधियों में क्षण लंबे और अत्यंत स्पष्ट लग सकते हैं। पुस्तक इन अनुभवों को रहस्यमय शक्ति के प्रमाण की तरह नहीं पेश करती। उनका संबंध इस बात से है कि ध्यान वर्तमान कार्य में कितना केंद्रित है और सामान्य समय संकेतों पर कितना कम जा रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी है। स्वचेतना का कम होना तभी रचनात्मक है जब गतिविधि में कौशल, उद्देश्य और वास्तविक नियंत्रण हो। केवल बाहरी उत्तेजना या आदतन व्यस्तता को फ्लो मान लेना उचित नहीं। लेखक का बिंदु यह है कि सार्थक चुनौती में पूर्ण भागीदारी व्यक्ति को क्षणिक रूप से आत्म संदेह से मुक्त कर सकती है। लिखो जैसे ओकरी गश्त की तो पका बरिक्तियास नोश और इस लेखक पर दबा के नौहित चबार की तो वार अच्छी सर बखिया ये कई चंद डिस्टेंडर्स का उत्तमार। और यही अनुभव गहरे आनंद का एक कारण बनता है। अंत में ऑटोटेलिक जीवन और काम, अवकाश तथा रिश्तों की पुनर्रचना पुस्तक ऑटोटेलिक अनुभव की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान देती है। ऑटोटेलिक गतिविधि वह है जिसका मूल्य मुख्यतः उसे करने में है, न कि केवल उससे मिलने वाले पैसे, पद, प्रशंसा या किसी दूरस्थ परिणाम में। इसका अर्थ यह नहीं कि बाहरी परिणाम महत्वहीन है। काम से आय चाहिए, शिक्षा से प्रमाण पत्र मिल सकता है और खेल में जीत आकर्षक हो सकती है, लेकिन जब गतिविधि पूरी तरह बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर हो जाती है तो उसकी आंतरिक गुणवत्ता कमजोर पड़ सकती है। चिक्सेंट मिहाय का प्रश्न है कि क्या व्यक्ति काम, अवकाश और संबंधों में ऐसी संरचनाएं बना सकता है जो ध्यान, कौशल और भागीदारी को आमंत्रित करें। काम में इसका अर्थ कार्य की मांगों को समझना, सीखने के अवसर खोजना और प्रगति के संकेत देख पाना हो सकता है। अवकाश में इसका अर्थ निष्क्रिय उपभोग के बजाय अभ्यास मांगने वाली रुचियां विकसित करना है। रिश्तों में इसका अर्थ साझा लक्ष्य, ध्यानपूर्वक संवाद और एक दूसरे की बढ़ती जटिलता में वास्तविक रुचि हो सकता है। लेखक यह दावा नहीं करते कि हर परिस्थिति को व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से आनंदमय बनाया जा सकता है। कुछ सामाजिक और कार्य परिस्थितियां सचमुच सीमित करती हैं। फिर भी पुस्तक व्यक्ति की सक्रिय भूमिका पर जोर देती है कि वह अपने ध्यान और कौशल के उपयोग के लिए अधिक अर्थपूर्ण अवसर पहचानना और बनाना सीख सकता है। निष्कर्ष में फ्लो उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो खुशी को केवल सकारात्मक भावना या बाहरी उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के अनुभव की गुणवत्ता के रूप में समझना चाहते हैं। विद्यार्थी, रचनात्मक पेशेवर, शिक्षक, प्रबंधक, खिलाड़ी और ऐसे लोग जो अपने काम या अवकाश में लगातार बिखराव महसूस करते हैं, इससे एक उपयोगी वैचारिक ढांचा पा सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह तल्लीनता को रहस्यमय प्रतिभा नहीं मानती। यह लक्ष्य की स्पष्टता, प्रतिक्रिया, कौशल, चुनौती और ध्यान के संबंध को पहचानने की भाषा देती है। पाठक अपने अनुभवों को ऊब, चिंता और गहरी भागीदारी के अंतर के माध्यम से अधिक सटीक ढंग से देख सकता है। फिर भी इसे त्वरित उपायों की पुस्तक समझना गलत होगा। इसका स्वर शोधपरक और चिंतनशील है और सिद्धांतों को अपनी परिस्थितियों में लागू करने का काम पाठक को करना पड़ता है। इसी बिंदु पर यह सामान्य उत्पादकता पुस्तकों से अलग दिखती है। इसका लक्ष्य केवल अधिक काम निकलवाना नहीं, बल्कि यह पूछना है कि कौन सी गतिविधियां चेतना में व्यवस्था, कौशल में वृद्धि और आंतरिक संतोष पैदा करती हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान की अनेक लोकप्रिय पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता अनुभव की सूक्ष्म संरचना पर जोर है। फ्लो यह समझाती है कि सार्थक जीवन का निर्माण बड़े अवसरों के इंतजार से कम और ध्यान को चुनौतीपूर्ण, चुनी हुई तथा स्वाभाविक रूप से पुरस्कृत गतिविधियों में लगाने से अधिक जुड़ा है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मिहाली सिक्सेंटमिहाली, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।